नमस्कार शिक्षार्थियों, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान में आप सभी का स्वागत है। आज मैं विषय रेडियो की विशेषताएं के बारे में बात करूंगा, जो पाठ संख्या 9 के अंतर्गत आता है। आपको एक बात बहुत अच्छे से पता होगा, वह है महाभारत में संजय का किरदार। उन्होंने क्या किया? उन्होंने धृतराष्ट्र को महाभारत के युद्ध का वर्णन सुनाया था, क्योंकि धृतराष्ट्र देख नहीं सकते थे। संजय अपनी दिव्य दृष्टि से युद्ध को बिना रणभूमि में गए देख सकते थे। आप संजय को पहले रेडियो प्रसारक के रूप में मान सकते हैं। मान लिया जाए कि आप गणतंत्र दिवस 26 जनवरी के दिन सुदूर हिमालय में हैं और आपको गणतंत्र दिवस परेड का हाल सुनने की इच्छा है, तो आप सिर्फ रेडियो माध्यम से सजीव प्रसारण गणतंत्र दिवस परेड का सुन सकते हैं। आइए बात करते हैं कि इस पाठ को जब मैं आपके साथ में चर्चा कर रहा हूँगा तो आप क्या क्या सीखेंगे। पहला बिंदु है रेडियो प्रसारण प्रक्रिया की व्याख्या, दूसरा रेडियो प्रसारण की विशेषता, रेडियो प्रसारण के विविध कार्य दायित्वों की पहचान एवं अंतिम रेडियो प्रसारण की सीमाएं। तो चलिए चलते हैं अपने पहले शीर्षक की ओर, जिसका नाम है रेडियो प्रसारण की शब्दावली। शब्दावली में पहला बिंदु आता है जनता। जनता लोगों का समूह है जो किसी रेडियो या मीडिया कार्यक्रम का दर्शक, श्रोता या पाठक होता है। इसके बाद श्रोता एक व्यक्ति अथवा समूह है जो किसी रेडियो कार्यक्रम का लक्षित व्यक्ति या समूह होता है। तीसरा प्रसारण, इलेक्ट्रॉनिक प्रौद्योगिकी की सहायता से जनता को संदेश तथ्य प्रेषित करने की प्रक्रिया। अन्य है रेडियो ट्यून करना, श्रोता द्वारा रेडियो चालू कर किसी रेडियो स्टेशन से कार्यक्रम सुनने के लिए फ्रीक्वेंसी सही रखना। सीधा प्रसारण, इसका आशय होता है कि किसी कार्यक्रम का जब वह हो रहा है सीधा वहीं से प्रसारण, यानी जहां कार्यक्रम हो रहा है वहीं से हम लोग जब लाइव प्रसारण करते हैं, सीधा प्रसारण करते हैं, उसको सीधा प्रसारण कहते हैं। इसमें पहले से रिकॉर्डेड कार्यक्रमों को हम लोग नहीं भेजते हैं। पूर्व ध्वन्यांकित रिकॉर्डेड कार्यक्रम, बाद में प्रसारण के लिए कार्यक्रम को मैग्नेटिक टेप, फोनोग्राफिक डिस्क या कॉम्पैक्ट डिस्क पर ध्वन्यांकन या रिकॉर्ड किया जाता है। और अंतिम स्क्रिप्ट, यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है रेडियो प्रसारण की शब्दावली का, किसी रेडियो कार्यक्रम में बोले जाने वाले अंश का लिखित मुद्रित स्वरूप। अब आइए चलते हैं अपने दूसरे शीर्षक की ओर, जिसका नाम है रेडियो के उद्देश्य। आपने पहले मॉड्यूल में जन संप्रेषण माध्यम की भूमिका के बारे में पढ़ा होगा। उक्त में विद्युत माध्यम जैसे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया यानी कि रेडियो, टीवी आदि के बारे में बताया गया था। इसके कार्य समरूपता लिए होते हैं। आपने किसी लोकप्रिय साबुन या शैम्पू का विज्ञापन तो अवश्य सुना होगा। यह क्या संदेश देता है? इसकी सहायता से साबुन या शैम्पू का ब्रांड नेम आपको पता चलता है। आपको यह भी बताया जाता है कि यह उत्पाद बाजार में उपलब्ध है। यह विज्ञापन आपको यह भी बताता है कि उक्त उत्पादन में क्या विशेषताएं हैं। एक उदाहरण के माध्यम से आइए हम जानते हैं कि रेडियो के उद्देश्य क्या क्या हैं। मान लीजिए जल आपूर्ति विभाग रेडियो के माध्यम से एक घोषणा करता है कि कल सुबह आपके गांव या इलाके में पानी की आपूर्ति बाधित रहेगी। आप इस स्थिति का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसी तरह रेडियो के जरिए आपको पता चलता है कि आने वाला रविवार पोलियो रविवार है, या फिर आने वाला रविवार जो है किसी विशेष इम्यूनाइजेशन के लिए पहले से सरकार द्वारा तय कार्यक्रम है। तो आप क्या करते हैं, आप अपने परिवार में उन लोगों को चिन्हित करते हैं कि किस किस का इम्यूनाइजेशन होना है, कौन कौन से बच्चों को पोलियो की दवा पिलानी है या अन्य उस संबंधित कार्यक्रम से आप पहले से तैयारी कर लेते हैं। आपने रेडियो पर कृषि आधारित ग्रामीण कार्यक्रम भी सुने होंगे। कार्यक्रम में विशेषज्ञ किसी मौसम में किस फसल विशेष के उत्पादन में बरती जाने वाली सावधानियों की जानकारियां देते हैं। इन जानकारियों का उपयोग कर आप खेती को बेहतर तरीके से कर सकते हैं। इसी तरीके से रेडियो में बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं जिससे हमें सूचनाएं मिलती हैं। और रेडियो का काम क्या है? रेडियो का कार्य है मुख्यतः हमें प्राथमिक रेडियो हमें सूचित करता है, रेडियो पर शैक्षिक कार्यक्रम सुनते हैं यानी कि हमें ज्ञान देता है, रेडियो शिक्षित करता है, रेडियो हमें सूचित करता है, रेडियो हमारा मनोरंजन भी करता है। तो ये सभी रेडियो के कार्यक्रम के अंतर्गत आ जाते हैं। आइए अब हम चलते हैं अपने अगले शीर्षक की ओर, रेडियो की विशेषताएं। तो रेडियो की बहुत सारी विशेषताएं हैं, मैं एक एक करके आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे रेडियो की पहली विशेषता है, रेडियो घटनाओं का सटीक चित्रण करता है। जैसे दिल्ली के गणतंत्र दिवस परेड का उदाहरण तो आपको याद ही होगा, आपने जब हाल सुना होगा आपके मन में अपने आप पूरा का पूरा दृश्य उभर कर आने लगा होगा। जब आपके कानों में देशभक्ति धुन बजाते बैंड या मार्च करते या कमांड के शब्द पड़ते हैं तो आपके मन में उनकी तस्वीर भी बन गई होगी। जब हाल सुनते हैं तो शब्दों का अनुसरण करते हुए आपकी कल्पनाशीलता सक्रिय हो जाती है और वर्णन के चित्र बनने लगते हैं। ये तो पहली विशेषता है रेडियो की कि रेडियो क्या करता है, शब्दों से चित्रों का निर्माण करता है। दूसरा है रेडियो की गति। रेडियो की गति क्या है? रेडियो सबसे तेज माध्यम है, यह तात्कालिक माध्यम है। देखिए सोशल मीडिया इंटरनेट के आने से पहले तक रेडियो सबसे तेजी से संचार के माध्यम के रूप में दुनिया भर में फैला और आज भी दूर दराज के क्षेत्रों में रेडियो अपनी गति की वजह से अपनी पकड़ बनाए हुए है। लेकिन वो कहा जाता है कि एक तकनीक के बाद दूसरी तकनीक उसको ओवरटेक कर लेती है, तो इसी तरह इंटरनेट ने थोड़ा रेडियो की विशेषताओं को कम किया है, लेकिन फिर भी अभी जहां जहां इंटरनेट नहीं पहुंचा है वहां पे रेडियो संचार का सीधा माध्यम है और सूचना बहुत तेजी से लोगों तक पहुंच जाती है। क्योंकि इसका अलग एक बिंदु है कि यह एक सरल माध्यम है और इंटरनेट क्या है, थोड़ा कठिन माध्यम है। तो हम कर रहे हैं रेडियो की बात, तो आइए लौटते हैं। अगला बिंदु है सरल माध्यम। अन्य माध्यमों की तुलना में रेडियो का उपयोग करना आसान है। जैसे कि पूर्व के खंडों में बताया गया है कि रेडियो सरल प्रौद्योगिक तथा उपकरणों की मांग करता है। अन्य बिंदु है रेडियो सस्ता माध्यम है। जी हाँ, रेडियो में आपको बहुत ज्यादा पैसा खर्च नहीं करना है, बहुत ज्यादा बिजली का कंजम्पशन भी रेडियो नहीं करता है, तो यह एक सस्ता माध्यम है। छोटे से सस्ते से सेट से आप सूचनाओं को दिन भर सुन सकते हैं। रेडियो को बिजली की जरूरत नहीं है, मैं ये आपको बता ही चुका हूँ। इसके अलावा रेडियो रिसीवर पोर्टेबल होता है। जी हाँ, सबसे बड़ा फायदा रेडियो के साथ में यही है कि रेडियो आप जहाँ चाहें वहाँ ले जा सकते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार रेडियो को कहीं भी ले जा सकते हैं। रेडियो सुनने के लिए अक्षर ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ, रेडियो सुनने के लिए आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। यह सीमा अखबारों के लिए बाध्य है, या यह आवश्यकता अखबारों के लिए बाध्य है, और ना ही आप टेलीविजन पर प्रदर्शित शीर्षक वाक्य पढ़ सकते हैं। लेकिन रेडियो सुनने के लिए पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है। आप रेडियो का कार्यक्रम या समाचार अपनी भाषा में सुन समझ सकते हैं। गांव में रहने वाले अधिकांश भारतवासियों के लिए रेडियो समाचार तथा मनोरंजन का इकलौता माध्यम है। रेडियो पर समाचार एक सस्ते रिसीवर की सहायता से कहीं भी सुने जा सकते हैं। समाज का आर्थिक रूप से सबसे पिछड़ा तबका भी रेडियो का खर्च वहन कर सकता है। रेडियो मनोरंजन का सबसे अच्छा माध्यम है। यह श्रोताओं को स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करता है। इस पर संगीत का वैविध्यपूर्ण खजाना श्रोताओं के लिए उपलब्ध है। शास्त्रीय, उपशास्त्रीय, भक्ति, लोक तथा फिल्म संगीत रेडियो पर उपलब्ध संगीत के लोकप्रिय प्रकार हैं। अब हम आते हैं अपने अगले शीर्षक की ओर, जिसका नाम है रेडियो प्रसारण की सीमाएं। अब सीमाएं क्या हैं? पहली जो बड़ी सीमा है वह दोहराव की सुविधा नहीं होती। जी हाँ, यानी कि यदि आप समाचार पत्र के पाठक हैं तो आप इसे सुरक्षित रख सकते हैं और दोबारा पढ़ सकते हैं। आपके पास मुद्रित सामग्री है तथा जब तक समाचार पत्र नष्ट नहीं होगा यह आपके पास ही रहेगा। जब आप समाचार पढ़ते हैं तो हो सकता है कि कुछ शब्द आपके समझ में नहीं आए, ऐसे में आप शब्दकोश की सहायता ले सकते हैं अथवा किसी जानकार व्यक्ति से पूछ सकते हैं। अब रेडियो को देखें, मान लीजिए आप अंग्रेजी के समाचार सुन रहे हैं तथा कुछ शब्द जो आपने सुने आपको समझ में नहीं आए, क्या आप शब्दकोश की सहायता ले पाएंगे या किसी से पूछ पाएंगे? यदि आप ऐसा करने के लिए रुकते हैं तो बाकी समाचार निकल जाएगा। जो भी आप सुन रहे हैं उसे आपको तत्क्षण सुनना है। आपके पास सुनने का एक ही मौका होता है। अगर आप रिकॉर्ड नहीं करते तो रेडियो पर प्रसारित शब्द ज़्यादा देर तक नहीं मौजूद रहते। शब्दों की उम्र क्षणिक होती है। समाचार पत्र या पुस्तकों के मुद्रित संदेशों के विपरीत उच्चारित शब्द स्थायी नहीं होते। यानी कि सीधा सी बात है कि दोहराव की स्थिति या दोहराव की सुविधा यहाँ नहीं होती। अगला बिंदु है, रेडियो का चित्र नहीं दिखाए जाते। यह एक ड्रॉबैक है रेडियो का। लेकिन जी हाँ, आप क्या करते हैं, रेडियो को शब्दों को सुनकर उनके चित्रों को अपने दिमाग में बनाते हैं। यही एक रेडियो का ड्रॉबैक है। इसके अलावा अन्य बिंदु है, रेडियो पर प्रसारित संदेश जल्द विस्मृत हो जाते हैं। जी हाँ, क्योंकि यह शब्द सिर्फ हम लोग सुनकर श्रवण परंपरा के माध्यम से सुनते हैं, समझते हैं और अपने अंदर ग्रहण कर लेते हैं। इसीलिए ये जो शब्द हैं या जो संदेश हैं बहुत लंबे समय तक हमारे दिमाग में याद नहीं रह पाते। कारण क्या है? इसका कारण यह है क्योंकि मनुष्य का सोचने, समझने और याद करने की एक सीमित शक्ति है या सीमित याद शक्ति है, जिसकी वजह से ऐसा होता है। और अंतिम बिंदु है, उद्घोषकों प्रस्तोता का कमजोर प्रस्तुतिकरण। अगर रेडियो कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले प्रस्तोता या उसमें भाग लेने वाले लोगों की प्रस्तुति बोर करने वाली या अनाकर्षक हुई तो श्रोता रेडियो सेट बंद कर सकता है। श्रोता की रुचि इस बात पर निर्भर करती है कि सूचना या संदेश कैसे प्रस्तुत किया जा रहा है। रेडियो प्रसारण उन लोगों के लिए किसी मतलब का नहीं जिसमें श्रवण संवेदना नहीं है और जो सुनने में अक्षम है। आशा है आज की चर्चा से आपको बहुत सारी जानकारियां मिली होंगी। धन्यवाद।